सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
ओम शांति। इसी में शांति की छाया है और सुख की धूप। कौन सा पुष्प खिला है हृदय में? पवित्रता का, जिसकी सुगंध ने क्या कर दिया? सुख ही सुख दिया, जिसकी सुगंध ने जीवन को महका दिया, जिसकी सुगंध ने जीवन में जो पतझड़ था वहां क्या उत्पन्न कर दिया? सब्ज कर दिया, गुलजार बना दिया। पवित्रता इस जीवन का आधार है, पवित्रता इस जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता इस जीवन की बुनियाद है, पवित्रता इस जीवन की नींव है। पवित्रता ही महानता है और पवित्रता की ही मान्यता है और पवित्रता की ही विशेषता है और पवित्रता की ही पब्लिसिटी, ब्यूटी, लॉयल्टी, प्यूरिटी, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ क्या है? इस ब्राह्मण जीवन का, इस योगी जीवन का, इस तपस्वी जीवन का आधार स्तंभ है। पवित्रता ही जीवदान है, पवित्रता ही प्रथम अधिकार है, पवित्रता ही आदि रंग अनादि स्वरूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला है। पवित्रता ही ब्राह्मणों के लिए छत्र छाया है, ब्राह्मणों का श्वास है, दिल की धड़कन है। ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं होगा, ऐसा कोई महानात्मा नहीं होगा जिसने अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को, साथियों को क्या बनाया? होलीएस्ट या पवित्र बनाया। सारे विश्व में, सारे कल्प में हम सब कौन है? इस संसार की पवित्रतम, उच्चतम, होलीएस्ट और हाईएस्ट, पवित्रतम और उच्चतम आत्माएं हैं, सर्वोपरि इस संसार की महानतम आत्माएं हैं। अभी कौन सा मास चालू है? नवंबर। तो आज हम चलते हैं किस मास में? मार्च, जहां पर सर्दियां समाप्त होती है और होली का आगमन होता है। होली अर्थात सर्दी समाप्त और वसंतोत्सव, वसंत ऋतु का आगमन अर्थात होली। तो यहां आगाज हो रहा है, हम चल रहे हैं अंत में। तो चले फागुन, फाल्गुनी कहा जाता है होली को, फाल्गुनी, धूली वंदन, होली का दहन और दूसरे दिन धूली वंदन। सदियों पहले कोई एक चित्रकार था, युवा चित्रकार, बहुत प्रसिद्ध। एक दिन उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई, किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र निकालूं, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर खींचूं जिसके चेहरे पर भगवान की छवि दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति का चित्र निकालूं जिसमें दिव्यता हो, पवित्रता हो, जिसको देखते ही इस संसार से पार रहने वाले उसकी खबर आती हो। ऐसे किसी व्यक्ति का चित्र वो निकालने की खोज में निकल पड़ता है, मंदिरों में जाता है, गिरजों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, यहां से वहां, गांव गांव में, शहर शहर में जाता है। और एक दिन उसे एक दूसरा युवा मिलता है, ऐसा ही एक चरवाहा, और वो देखता है उसके चेहरे पर वैसी ही दिव्यता की झलक है जो उसने कभी कल्पना की थी, उसके चेहरे पर वैसी ही पवित्रता है जो उसने सोची थी। और कहता है कि यही वो व्यक्ति है और इसी का मैं चित्र निकालूंगा। और उसका वो चित्र निकालता है और वो चित्र इतना प्रसिद्ध हो जाता है, गांव गांव शहर शहर सब अपने अपने घरों में उस चित्र को टांग देते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर मुखमंडल पे वैसा वो दिव्य तेज प्रकाश आलोक रहता है। कई साल गुजरते हैं, ये युवा चित्रकार 20 साल 40 साल गुजर जाते हैं, युवा चित्रकार अब बूढ़ा हो जाता है, अब सोचता है जीवन के अनुभव के आधार से कि मनुष्य के हृदय में केवल दिव्यता ही नहीं, वहां कटुता भी है, शैतानी भी है। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र ढूंढूंगा कि जिसमें कुरूपता है, असुंदरता है, अदिव्यता है, अपवित्रता है, और निकल पड़ता है। वो कहता है कि जीवन के ये दो चित्र चाहिए तो ही मनुष्य जीवन पूरा होगा। इसके लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में वो निकलता है। कहाँ जाता है? शराब घरों में जाता है, पागल खानों में ढूंढता है, जुआ खानों में जाता है, और एक दिन उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाता है किसी कारागृह में कि जिसे देखते ही जिसकी आंखों में घृणा है, जिसे देखते ही साक्षात नरक के दर्शन हो जाए, ऐसा एक दुर्दांत खूंखार अपराधी जिस पर बहुत सारे हत्याओं का दोष था, आरोप था, और अभी कुछ ही दिनों के बाद उसे फांसी पर लटकाया जाने वाला था। ऐसे व्यक्ति को वो देखता है और कहता है यही है वो, और मैं इसी का चित्र निकालूंगा। कई दिनों तक उसका चित्र बनाता है, चित्र तैयार हो जाता है। कारागृह में वो साथ साथ अपने उस चित्र को भी ले जाता है जो उसने पहले व्यक्ति का बनाया था। दोनों चित्रों को सामने रखता है और मुग्ध हो जाता है कला के सौंदर्य पर। कला की दृष्टि से देखता है इसमें से श्रेष्ठतम कौन है। दोनों ही चित्र अपने आप में अप्रतिम है, अद्भुत है, अनूठे है। देखते ही रहता है तो पीछे से रोने की आवाज आती है। पूछता है वही अपराधी सलाखों में बेड़ियों में, पूछता है दोस्त तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो तुम, तुम्हें क्या तकलीफ है इन चित्रों से। वो कहता है कि एक राज मैंने अब तक छुपा के रखा जब तुम ये चित्र बना रहे थे। जो तुमने पहला चित्र बनाया था वो मैं ही था। क्या था और जीवन ने क्या बना दिया? वो निर्मलता, वो पवित्रता, वो निर्दोष भाव खो गया, जीवन में जटिलता आ गई, और वही व्यक्ति अब एक अपराधी बन गया। कहां वो पुण्य और कहां ये पाप, कैसी ये यात्रा है स्वर्ग से नरक की। हम कौन थे और अब क्या हो गए थे, और बाबा ने आके क्या कर दिया? हमारा भी चित्र कैसा था? वैसा दिव्य, वैसा पवित्र, और यात्रा करते करते हम भी कहां पड़े, पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी। कुंभी पाक नरक में रो रो नरक में आ गिरे। तो भगवान ने हमें चित्र दिखाया कि तुम ये थे सारे कल्प में, चक्र लगाकर ढूंढो, खोजो, देखो। क्या देखो? नजर डालो, हाईएस्ट, होलीएस्ट, श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच और कोई दूसरा है? कोई नहीं, तुम ही हो, तुम ही थे। ये स्मृति ने ही क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया कि हम ये थे, ये हमारा स्वरूप है, ये हम है। जीवन को बदल दिया, जीवन की ऊर्जा जो नष्ट हो गई थी विकारों से, फिर से उसने आकर पवित्रता का मंत्र कान में फूंक दिया। जन्मते ही वरदान दे दिया, कौन सा? पवित्र भाव और योगी भाव। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये योगी जीवन का समान है। आते ही सम्मान दे दिया, आते ही वरदान दे दिए। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माओं को देख रहे हैं, हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे कल्प में ढूंढने को कहा कि ढूंढो कहीं है। तीन स्वरूपों के बारे में बाबा ने बात की है। सबसे पहला स्वरूप हमारा राज्य अधिकारी का, दूसरा स्वरूप पूजनीय, और तीसरा स्वरूप संगम युग का स्वरूप। राज्य अधिकारी, राजे तो बहुत हुए हैं, पर तुम सर्वश्रेष्ठ, विश्व राजन, रॉयल फैमिली, ऐसी श्रेष्ठ और कोई नहीं। राज्य कैसा था तुम्हारा? अटल। राज्य कैसा था? अखंड। राज्य कैसा था? निर्विघ्न, निष्कंटक। एक छत्र साम्राज्य था उस राज्य में, किसी की ताकत नहीं उस राज्य पर आक्रमण करने की। ऐसा वो राज्य तुम्हारा था और तुम वहां के राज्य अधिकारी थे, हाईएस्ट। तो राज्य अधिकार में भी हाईएस्ट, सतयुग त्रेता। और फिर द्वापर से तुम्हारा कौन सा स्वरूप है? पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय, प्रार्थनीय, प्रातस्मरणीय, वो तुम थे। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो कौन है? तुम हो। याद दिलाया, स्मृति दिलाई कि वो तुम हो, और स्मृति ने ही परिवर्तन कर दिया। तो जितनी विधि पूर्वक तुम महान आत्माओं की पूजा होती है संसार में, और किसी की नहीं होती। इसी को बाबा ने क्या कहा? यही ड्रामा का राज है, वंडरफुल राज है, श्रेष्ठ राज है, यही वंडरफुल खेल है कि तुम यहां इस समय चैतन्य में भी हो और दूसरी तरफ जड़ मूर्तियां, दूसरी तरफ जड़ चित्र देख रहे हो और जान भी रहे हो, जानते भी हो और देख भी रहे हो। तुम्हारे ही आंखों के सामने किसकी पूजा हो रही है? तुम्हारी ही पूजा हो रही है। कितनी अद्भुत बात है। जिन देवियों के लिए तड़पते हैं भक्त, पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, क्या कुछ नहीं करते, वो सब कौन है? उन्हीं से मिलने कल कौन आ रहा है? ऐसी महान आत्माओं से मिलने आता है भगवान। साधारण आत्माओं से मिलना उसे पसंद नहीं। बड़े आदमी किससे मिलते हैं? बड़ों से मिलते हैं। तो भगवान भी आ रहा है महान आत्माओं से मिलने, संसार की चुनी हुई आत्माओं से मिलने। बाबा को, भगवान को मैंने लाया, ये नशा तुमको होना चाहिए। भगवान मेरे लिए आ रहा है, भगवान को मैंने लाया। अपनी प्रेम और अधिकार की रस्सी से क्या कर दो? सूक्ष्म रस्सी से उसको बांध के कहां रखो? दिल में। और वहां से भाग गया तो भागता है वो। भक्ति में गायन है, नटखट तेरा लाल यशोदा, नटखट तेरा लाल। इधर से उधर और उधर से उधर वो भागता है, ये हम भगाते हैं। शिवलाल नटखट। तो राज्य अधिकार में हाईएस्ट, पूज्य थे तब भी हाईएस्ट, ये वंडरफुल राज है। और अब संगम युग पर क्या क्या हो गया? अभी कौन मिल गया? अभी किसके अधिकारी बन गए? अभी परमात्मम प्रेम के, परमात्म वर्षे के, परमात्म मिलन के, परमात्मा परिवार, प्रभु परिवार, प्रभु प्यारों का संगठन, वाह वाह का संगठन। यहां पहुंच गए, अभी इस परिवार में पहुंच गए। उस समय को और इस समय को देखो, कौन सा समय श्रेष्ठ है? कौन सा समय श्रेष्ठ है? ये समय श्रेष्ठ है। फिर पूछते क्यों हो कुमार कि विनाश कब होगा? ये समय कैसा है? सुहावना। ये समय कैसा है? न्यारा, प्यारा, सुंदर, मनोहर, मनहर, वैल्यूएबल ऐसा समय सारे कल्प में देखो, अगर महान समय है तो अब है। 3 तारीख की मुरली, महान समय है तो अब है। इसके लिए ही गायन है, महान संगम युग। तो जिस समय हम हैं और अभी है, इस सारे कल्प में ये महान समय है, श्रेष्ठतम समय है, वैल्यूएबल समय है। ऐसा समय और नहीं आएगा हाथ में। अभी गया तो गया, जो करना है अभी कर लो। एक बार गया तो गया, फिर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, बहुत कुछ कर सकते थे नहीं किया, पश्चाताप, दिल फाड़ फाड़ कर जार जार रोएंगे। संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय। क्या कहा बाबा ने? संगम युग का समय, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय। संगम युग के आंतरिक वर्षे के बारे में भी बाबा ने बात की है आज। वो कौन सा है? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता। ये क्या है? संगम युग का वर्षा है। संगम युग के राज्य अधिकारी बनना अर्थात इन तीनों चीजों को प्राप्त कर लेना, यह है संगम युग का राज्य अधिकार, जो यहां प्राप्त होता है और कहीं नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और हमारा क्या होगा? क्या प्रश्न पूछते हैं बाबा से? क्या होगा, हमारा क्या होगा, कब होगा, कहां होंगे? बाबा ने उत्तर क्या दिया? जहां भी होंगे, याद में होंगे तो कुछ नहीं होगा, सेफ रहोगे। अगर पर बुद्धि यहां वहां है तो सेक लगेगा, प्रभाव पड़ेगा, परंतु यदि याद में है, कंबाइंड स्वरूप में है, एक सेकंड भी बुद्धि इधर उधर नहीं है तो सेफ रहेंगे। उदाहरण दिया, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के पुंगरे। विष्णु पुराण, प्रह्लाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार, जहां पर प्रह्लाद के कथा में दिखाया है किसी किसान की एक भट्टी होती है जिसमें गलती से बिल्ली के बच्चे चले जाते हैं और किसान को जब ये पता चलता है तो बड़ा दुख होता है, उसको बहुत रोता है कि अभी बिल्ली के बच्चे भी मर जाएंगे। परंतु जब प्रह्लाद को पता चलता है तो वो क्या करता है? प्रार्थना करता है, वो भक्त होता है विष्णु का, नारायण से प्रार्थना करता है कि इनको बचा लो। और थोड़े ही समय में खेलते खेलते वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। वो उदाहरण है कि सेफ, अगर याद में है, अगर साथ है, अगर कंबाइंड है, अगर बुद्धि यहां वहां नहीं है तो सेफ है। फिर ये मत सोचो कि विनाश कब होगा, कहां होगा, क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। भगवान जहां साथ है वहां कुछ अहित, अमंगल, अकल्याणकारी हो नहीं सकता। सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। निगेबान भगवान है। दूसरी बात, ये तो थी विनाश की बात। फिर बाबा ने क्या कहा? कामकाज करते क्या हो जाता है? कामकाज करते इतनी बुद्धि बिजी हो जाती है कि बाप को भूल जाते हैं और फिर क्या अनुभव करते हैं? अकेलापन, और फिर उसके बाद थकान, उदासी, अवसाद, दुख, विषाद, अच्छा नहीं लगता है कुछ। जब बाप भूल जाता है, अकेलापन आ जाता है, जीवन उदासी में डूब जाता है, वो खुशी, वो आनंद, वो नृत्य कहीं तिरोहित हो जाता है। कब? जब व्यस्त हो जाते हो, बुद्धि बिजी हो जाती है। परंतु बाबा ने और एक चीज कही थी यहां पर जो हम भूल रहे हैं, तुमको सहयोग देने वाला कौन है? हजार भुजा वाला। और जाते किसके पास? ऊपर दो भुजा वाले के पास। क्यों? जब क्यों जल्दी याद नहीं आती हजार भुजा वाले की? दो भुजा वाले क्यों अच्छे लगते हैं? वो दिखाई देते हैं, वैरायटी है। कितने बार सहयोग देते हैं दो भुजा वाले? अल्पकाल, एक बार, दो बार, तीन बार, बस। फिर तो ज्यादा सहयोग नहीं दे सकते। संसार की आत्माएं सदा का सहयोग नहीं दे सकती है। संसार की आत्माओं में स्वार्थ निहित है। सदा के सुखहर्ता, दुख सुखकर्ता, दुख हर्ता नहीं बन सकते। संसार के साथी कहां तक जाते हैं? शमशान तक। और ये मीत शमशान से आगे। संसार में जो प्रीत है वो झूठी है, धोखा है उसमें। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार के सब लोग किस लिए प्रीत करते हैं? स्वार्थ के लिए प्रीत करते हैं। एक परमात्म प्रेम ही ऐसा है जो संपूर्ण निस्वार्थ है। तो दो भुजा वाले क्या सहयोग नहीं लेते हो? क्यों? बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सा सहयोग बड़ा है, ये या वो? वो अल्पकाल का है, ये सदा का है। बाबा कहा और सहयोग अनुभव हुआ। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहा और सहयोग अनुभव हुआ। कितना फास्ट। परंतु आवाज कहां से आनी चाहिए? ये मुख का सौदा नहीं है, ये दिल का सौदा है। हृदय से, अंतकरण से, प्राणों की गहराई से, चेतना की गहराई से आवाज निकलनी चाहिए। वो आर्तनाद हो तो जाकर सीधा कहां पहुंचेगा? परमधाम में। और उसका सिंहासन डोलने लगेगा, देखेगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है, कौन सी माता है वो। बाबा भी सोचेगा, चलो बाकी सब काम छोड़कर पहले यहां का काम पूरा करे। तो भगवान बंधा हुआ है, भगवान को तुमने बांधा है अपने प्रेम और अधिकार की सूक्ष्म रस्सी से बांधा है। कौन बड़ा है, बांधने वाले या बंधन में बंधने वाला? बांधने वाले बड़े हैं, बड़े हैं ना। तो कामकाज करते भूल जाते हैं, कामकाज करते अकेलापन आ जाते हैं। क्या कहते हैं? थक गए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकान आना, ये भी स्लोगन क्या था? आलस की निशानी है। बाबा ने क्या उत्तर दिया इसके लिए? संसार की दो महान विभूतियां हैं जो तुम्हें सहयोग देने के लिए निरंतर हाजिर है। भगवान भी क्यों आया है संसार में? अपना परम धाम छोड़कर क्यों आया? क्यों आया? बच्चों को वर्षा देने? आज का बताओ, आज क्यों आया? वैसे तो उसके आने के कई कारण है। राम जन्मते हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसके आने के कई कारण है। केवल रावण को मारने नहीं आया था राम, उसके बहुत सारे कार्य थे। आज क्या कारण है उसके आने का? मिलने के लिए। दूसरा कारण बताओ, आज क्यों आया था यहाँ? कहाँ सहयोग देने? खाते, सोते, जागते, खाते पीते भी ब्रैकेट में, सोते जागते सेवा करते, कर्म करते, सदा सहयोग देने के लिए ही तो आया है ना। तो सहयोग लो ना। भगवान आया है और क्या कह रहा है? सहयोग ले लो सहयोग। और कोई आता नहीं उससे लेने। वो सुबह सुबह सब्जी वाला घूमता है ना। तो भगवान भी आया है, सहयोग ले लो सहयोग, हजार भुजा के साथ। और बच्चे भाग रहे हैं दो भुजा वालों के पास। वो कहता है मेरे पास आ जाओ, वो कहता है बाद में आएंगे, पहले इनसे ले लेते हैं। सौदा महंगा लग रहा है। ब्रह्मा बाप भी क्या कर दिया उसने, अपना कमरा चौवन चेंज कर दिया, फर्स्ट फ्लोर से कहां चले गए, सेकंड फ्लोर पे। क्यों? कम पढ़ने लगा, छोटे पढ़ने लगा कमरा। और क्यों चले गए? वतन को चेंज किया। किस लिए चेंज किया? क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त हो गया, क्योंकि सहयोग की जो रफ्तार है वो अव्यक्त में तीव्र है। तो दोनों ही हाजिर है, बाप और दादा दोनों ही हाजिर है सहयोग देने के लिए। तो प्यार और अधिकार की रस्सी से बांध लो। सारे कल्प में सदा साथ का ऑफर करने, ऐसा कभी ऑफर मिलेगा? लेटेस्ट ऑफर, टिल डेट लिखी रहती है हमेशा, संगम युग तक ही ऑफर है। संगम युग के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगी, सदा साथ का ऑफर। फिर बाबा ने मर्ज इमर्ज की बात की है। क्या कहा यहां पर? मर्ज इमर्ज के लिए बुद्धि बिजी हो जाती है। संगम युग के सुख और सुहेजो को सदा इमर्ज रूप में रखो, याद, स्थिति और तीसरा साथ, इन तीनों को क्या करो? इमर्ज रूप में रखो। तो क्या हो जाएगा? मर्ज और इमर्ज का अंतर पूरी मुरली में एक ही जगह है जहां बाबा ने कहा चेक करो कि मर्ज और इमर्ज में क्या अनुभव होता है, क्या अंतर है। जब याद, स्थिति और तीसरा साथ, अगर इमर्ज है तो क्या हो जाएगा? नशा। इमर्ज है तो शक्ति, इमर्ज है तो सहयोग, इमर्ज है तो सफलता बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। अगर मर्ज है तो छोटी होगी, नशा भी नहीं होगा, प्राप्ति भी नहीं होगी, सहयोग भी नहीं मिलेगा, शक्ति भी नहीं मिलेगी और सफलता भी नहीं मिलेगी। अगर मर्ज है तो इसके लिए क्या रखना है? इमर्ज्ड। अगर बता दिया जाए 10 दिन के बाद आपके सामने एक बहुत जबरदस्त परिस्थिति आने वाली है तो क्या करोगे बताओ? 10 दिन के बाद आपके जीवन का सबसे कड़ा पेपर आने वाला है जो अब तक नहीं आया था, क्या करोगे? कुंती माता क्या करेंगे? कोई बता दे कि 10 दिन के बाद एक भयंकर पेपर आने वाला है, याद से क्या? आने ही नहीं देंगे, पर आने वाला है, ड्रामा में नूंद है। वो अंतर है मर्ज और इमर्ज का। वहां पर याद, वहां पर साथ, वहां पर स्मृति कैसी होगी? इमर्ज रूप में होगी। निरंतर कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा, निरंतर याद रहेगी अहर्निश, एक सेकंड भी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि पता है संकट के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय, परिस्थिति के समय एक वही सहारा है, और कोई सहारे दाता नहीं हो सकता। संसार के सारे सहारे टूटने हैं। जब संसार प्रचंड रूप धारण करेगा, ऐसा ही स्लोगन लिखा है ना कहीं, तूफान, प्रचंड रूप तूफान आएगा, तो परमात्मा की गोद ही एकमात्र सहारा होगा। विशाल भवन में लिखा है? अच्छा डायरी में भी लिखा है, डाइनिंग में। अच्छा, बाप और तुम्हारा जो नाता है वो कैसा है? सदा का है। भल बाप सतयुग में नहीं है, परंतु तुम्हारा नाता कैसा है? सदा का है। इसके लिए उसको तो आना ही है, पर बच्चे क्या कर देते हैं? उसको अलग कर देते हैं, अलग बिठा देते हैं। किस लिए? साक्षी हो, देखने के लिए। फिर बाप भी क्या सोचता है? देखता हूं कब तक अकेले चलते हैं। भगवान भी देखता है, मुझे अलग कर दिया, अभी मैं देखता हूं कैसे चलते हैं मेरे बगैर। तो बाप और बच्चों का नाता कैसा है? सदा का है, और टूट है, भूल ही नहीं सकती याद। ये याद ऐसी है, याद कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुझ पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। गीत है, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, फिर भी प्यार क्या हो जाता है? अगर टूटता नहीं है तो प्यार का क्या करो, फायदा लो, तरीका ढूंढो, तरीका खोजो। किसका तरीका? प्यार को फायदा उठाने का तरीका खोजो। कौन से तरीके है वो कि जिससे परमात्मा प्यार का फायदा हम उठाए? क्या कर सकते हैं उसके लिए? चार्ट लिखो और सच्चाई और सफाई और नहीं, फायदा उठाना है, प्यार तो बहुत है, अब उस प्यार से फायदा कैसे उठाए? बाबा ने कहा इसका तरीका सीखो। क्या कहा है बाबा ने? तरीका सीखो, क्या करे कि जिससे जो प्यार है उससे कुछ फायदा हो जाए, उसके लिए क्या करे? अटेंशन और चेकिंग, और पहले तो प्यार बढ़ाना पड़ेगा। प्यार कैसे को बढ़ाने का, प्यार से फायदा लेने का तरीका बताओ। प्यार से फायदा लेने का तरीका वो रिजल्ट है सफलता। भिन्न भिन्न संबंध से उसको याद करना, भिन्न भिन्न संबंध से उसके उसको याद करना, भिन्न भिन्न रूप से उसको याद करना, हमेशा उसे किसी ना किसी बहाने याद करना, जो कुछ है उसको समर्पित कर देना, एक एक संकल्प का उसे भोग लगाना, तन मन धन सब कुछ उसको दे देना, सब कुछ उसके लिए करना, वो हमारे जीवन का जैसे कोई एक व्यक्ति बन जाए जो हमारे साथ साथ है, आते नहीं नजर पर सदा साथ साथ हो, यही आसपास हो, तुम तो यही कहीं बाबा, ऐसा अनुभव निरंतर हो। उसको क्या कर सकते, थोड़ा फोन लगाया करो कभी कभी, उससे बार बार बीच बीच में बातें किया करो कभी कभी, उसको क्या करो लेटर लिखा करो कभी कभी, तो प्यार बढ़ेगा, फायदा मिलेगा। इसका तरीका सीखो बाबा ने कहा, ऐसा क्या करे कि हमारा और उसका जो प्यार है सबसे पहले तो वो बढ़ जाए। छिप छिप के उससे मिलना है, कोई देखे तो नहीं, छिप छिप से बातें करो, छिप छिप से उससे मिलो, रुरियान करो, दिल की हर बात उसे बताओ, तो वो मदद करेगा। और उससे अगर प्यार बढ़ाना है तो उसकी मुरली से भी प्यार बढ़ाना पड़ेगा, और उससे अगर प्यार करना है तो उसका जो परिवार है उससे भी प्यार करना पड़ेगा। ये सबसे मुश्किल काम है, बाप से तो प्यार कर लिया, संगठन से प्यार कर लिया, अब ये परिवार का क्या करे? हमने तो कभी मांगा ही नहीं था, भक्ति में मांगा था परिवार चाहिए, हमने क्या मांगा था? तुम चाहिए, हमने मांगा था तुम आ जाओ, पर हमें ये नहीं पता था कि साथ में परिवार भी आ जाएगा। हिसाब किताब चुक तू करने, आज बोला है वरदान में, देह और देह के आकर्षण के जो हिसाब किताब से चुक तू करने में, उस आकर्षण से नष्ट मोहा है, और वही संपूर्ण स्थिति है, और वही मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप है। वैसे जैसे देह और देह का आकर्षण वो जैसे एक परिस्थिति है, वैसे यहां से भी परिस्थिति आती है, यहां से भी हिसाब किताब निकलते है कर्म भोग। तो परमात्मा प्रेम बढ़ता जाए उसके लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उसने कहा है, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो ब्रह्मा बाबा ने किया है। अपने प्यार को ऊंचा उठाना है, उच्चतम शिखर पर पहुंचाना है, परमात्मा प्रेम के गौरी शंकर तक उसको पहुंचाना है, चेतना के उच्चतम शिखर पर स्वयं को ले चलना है, ताकि संसार की छोटी मोटी बातें हमें प्रभावित ना कर सके कोई भी चीज यहाँ की। उसके बाद बाबा ने प्यार की महिमा की, इस प्यार ने ही क्या कर दिया तुमको, फोर्थ पैराग्राफ, इस प्यार ने ही क्या कर दिया बाप का बना दिया, इस प्यार ने ही क्या कर दिया मधुबन का मधुबन निवासी बना दिया, इस प्यार से ही क्या करते हो और परिस्थिति सरकमस्टांस की दीवार को पार करके यहां पहुंच गए, धर्म की दीवार, धर्म की दीवार, लोकलाज की दीवार, देश की दीवार, धर्म की दीवार, ये सारी क्रॉस करके यहां तक आ गए। किस आधार से? परमात्मा प्रेम के आधार से। बाबा ने किन बच्चों को याद किया जो बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, जिनको टिकट लेने में भी मुश्किल थी, उनको भी वो देख रहा है। इसका मतलब सब पर उसकी नजर है, आगे वाले, पीछे वाले, नीचे वाले, सबको देखता है वो, सामने वाले, पीछे वाले, कोने वाले, बीच वाले, सबको देखता है। चारों ओर दशों दिशाओं की तरफ उसकी नजर है। तो किसको याद किया बाबा ने? उनको जो रहते गृहस्थ में है। और यहां कैसे पहुंचे हैं? बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। सर्कमस्टांसेस तो बढ़ते ही जाने वाले हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी है, पर स्थूल सहयोग भी मिलेगा, चाहे देश वाले चाहे डबल विदेशी कोई भी हो। यहां पर कोई है जिसके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे आते समय? सबके पास थे। अमीर बाप के बच्चे बैठे तो बाबा उनको भी याद कर रहे जाते समय थे, आते समय थे, जाते समय अभी नहीं है। अच्छा, यहां पर जैसे ये मुरली के दो भाग हैं, यहां बाबा ने अच्छा कहा और इसको यहां पूर्ण किया। तो क्या सुना अब तक? बाबा ने सबसे पहले तो हमें ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए, अपने तीन स्वरूपों का ज्ञान कराया, विनाश के समय तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए, कामकाज करते जब अकेले हो जाते तो तब क्या करना है उसके बारे में बताया, परमात्मा प्रेम और अधिकार की रस्सी से क्या करना है वो बताया। उसके बाद मर्ज और इमर्ज इसकी चेकिंग करने के लिए कहा, और उसके बाद में प्यार की महिमा की, इस प्यार ने क्या कर दिया, मधुबन निवासी बना दिया। कहां कहां थे वहां वहां से यहां आ गए, क्या थे और क्या बन गए, क्यों बन गए, मधुबन इस परमात्मा प्रेम। सब कुछ सहन भी किया, क्यों सहन किया, प्यार की वजह से सहन किया। हाँ, उसमें आएंगे अभी हम। तो परमात्मा प्रेम ये अमूल्य पूंजी है, ये ऐसी पूंजी है जिसे हृदय में संजो कर रखी जाती है। उसके बाद में दूसरी मुरली है, दूसरी तो नहीं कहेंगे, एक ही मुरली है, दूसरा पार्ट होली के बारे में। चार प्रकार की बाबा होली सुनाते हैं हमेशा। पहली होली जलाने वाली होली, दूसरी होली बिंदी लगाने वाली होली, पास्ट इज पास्ट होली, तीसरी होली मनाने वाली होली, चौथी होली संस्कार मिलन मनाने की होली। इस तरह से चार होलियां बाबा हमेशा कहते हैं। आज की मुरली में तीन होलियां बताई, होली मना ली या मना रहे हो? बाप दादा बच्चों को क्या टाइटल देते हैं? हाईएस्ट। फिर धर्मात्माओं की बात की कि उन्होंने कभी नहीं बनाया अपने फॉलोअर्स को भी, खुद तो बने परंतु नहीं बना पाए। पवित्रता के बारे में यहां पर बातें हैं, महानता है, ब्राह्मण और योगी जीवन का आधार है। चलते चलते किस किस का आधार है? ज्ञान का आधार एक, दूसरा जिसको पढ़ाई कहेंगे योग का भी आधार, तीसरा कर्म का भी आधार, चौथा परमात्मा वर्षा संगम युग का वर्षा अनुभव करने का आधार भी पवित्रता ही है। ये चारों ही बातों का आधार पवित्रता बताया बाबा ने। सबसे पहला पढ़ाई, पढ़ाई में सबसे पहला स्लोगन क्या है? पवित्र बनो और योगी बनो, पढ़ाई की बात। कर्म में क्या कहा? चलते चलते, या योग के लिए क्या कहा? चलते चलते बच्चे क्या अनुभव करते हैं कि अगर थोड़ी भी अपवित्रता है, अंश मात्र भी अपवित्रता, उसकी परिभाषा बाबा ने क्या कही? व्यर्थ संकल्प, निगेटिव और परचिंतन। अगर ये है तीन तो क्या हो जाएगा? जो पावरफुल योग चाहते हो वो नहीं होगा। अगर ये अपवित्रता है तो ये अपवित्रता भी क्या करेगी? अंश की अंश मात्र अपवित्रता भी धोखा देगी। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा को हल्का करना अर्थात मनसा दिखाई नहीं देता है परंतु धोखा बहुत देता है। दो चीजें धोखा देती है, एक तो अंश मात्र अपवित्रता और दूसरा धोखा देने वाली कौन सी चीज है, कौन बताएगा? दो चीजें धोखा देती है, एक तो अंश मात्र अपवित्रता है तो धोखा मिलेगा, और दूसरी धोखा देने वाली चीज बाहर के साधन और बाहर की सेवा। स्वयं को खुश करते हैं कि हमने तो अच्छी सेवा की, खुश करते थे, परंतु क्या कहा बाबा ने, स्वयं को धोखा देते हैं। स्वयं को धोखा देना ये सबसे बड़ा धोखा है संसार का, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं है। स्वयं को ही धोखा देना, स्वयं ही सोचना कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्वयं को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी सोच रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस यही अंतिम है, या हम सबसे अच्छा कर रहे हैं और दूसरे कुछ नहीं कर रहे, हम ही सबसे अच्छे कर रहे हैं, हमने जो सेवा की वो सबसे अच्छी सेवा है, हमने जो बोला सबसे अच्छा बोला, हमने जो पढ़ा वो सबसे अच्छा पढ़ा, जिस प्रकार की सेवा है, जिस प्रकार का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो सर्वोपरि है। ये भी क्या है, स्वयं को धोखा देना। बाबा ने कहा ना, कभी युक्त कभी मिक्स, कभी दिल से करते हो तो कभी दिमाग से करते हो, मिक्स्ड है। ऐसी सेवा बाबा को नहीं चाहिए, वो तो खुद को इस सेवा से, बाबा ने कहा दो बातों से वंचित हो जाओगे अगर ऐसा स्वयं को धोखा देते हो तो। कौन सी दो बातें? सदा की संतुष्टता, मन की जो संतुष्टता है वो, और दूसरा वो अल्पकाल बहुत काल भविष्य की प्राप्ति है, खुशी और संगम युग का जो सुख है, हाँ आंतरिक वर्षा, उससे भी वंचित हो जाते हो। मन की संतुष्टता, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, इन सब चीजों से वंचित हो जाते हो अगर स्वयं को धोखा देते हो तो। इसके लिए पुरुषार्थ में निरंतर तड़प चाहिए, वैसी ही तड़प जब पहले आए थे ज्ञान में, वैसी ही तड़प जैसी बांधेलियों को है। अगर पुरुषार्थ में तड़प नहीं है तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, और आगे बढ़ना है। संतुष्ट पुरुषार्थ में नहीं होना है, स्थिति को आगे ही आगे बढ़ाते जाना है, श्रेष्ठतम स्थिति का अनुभव करना है, यह अध्यात्म का मार्ग है, इस पर आगे आगे बढ़ना होता है। जो निम्न पुरुषार्थी है उन्हें नहीं देखना है, जो हमसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उन्हें देखना है। उसके बाद में क्या कहा बाबा ने, दो प्रकार के धोखा। फिर होली के ऊपर फिर से आ गए, होली मनाना अर्थात किसको जलाना, सबसे पहला होता है जलाना। जलाना किसको है? अपवित्रता को जलाना। कोई एक दूसरी मुरली है होली की जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हारे पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, युद्ध के संस्कार, ये सब सूखी लकड़ियां है, होली में लकड़ियां गोबर वो सब जलाते हैं ना, तो ये सब लकड़ियां है, इसको दृढ़ संकल्प की तीली से, अभ्यास की तीली से, उसमें माचिस लगानी होती है, माचिस से उसका संपर्क हो, माचिस है बाप, और पर तीली में मसाला भी लगा हो उस मुरली में है, उससे इन सब को जला दो। ये है होलिका दहन। पहले दिन होलिका दहन होता है ना, उसके दिन फिर दूसरे दिन मनाते हैं, रंग खेलते हैं, धूली वंदन। तो सबसे पहले ये, फिर दूसरा है मनाना। मनाने के लिए दो बात, एक तो डांस करते हैं और दूसरा आज की मुरली से गुलाब बाशी, गुलाब जल डालते हैं। तो तुम्हें कौन सा गुलाब जल डालना है? एक दो के गुणों के वाइब्रेशंस को फैलाना, और डांस सदा का डांस, 5-10 मिनट का डांस बाबा को पसंद नहीं है, निरंतर डांस। और रंग कौन सा उड़ाओ? रंग के बारे में बोला नहीं, खुशी का, स्नेह का, ज्ञान का, योग का, शक्तियों का। कभी एक दूसरी एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा पिचकारी की बात कर रहे, तुमने बाबा नैनों से अष्ट शक्तियों की पिचकारी बच्चों पर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नैनों से, वो अलग अलग रंग की पिचकारी यूज करते हैं, तो बाप भी अलग अलग रंग की, अलग अलग शक्तियों की पिचकारी दृष्टि से बच्चों पर डाल रहे हैं। देखा है ना बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को देखा है कि नहीं होली खेलते हुए। तो भगवान को होली खेलते देखना यह भी कितना बड़ा भाग्य है, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पर बाबा ने एक और मुरली है होली की, जिसमें कहा है रंग खेलते खेलते मिकी माउस मत बन जाना, इतना रंग स्वयं को नहीं लगा दो कि मिकी माउस बन जाओ। तो यह है मनाना, फिर है जलाना, और फिर तीसरा है मिलन मनाना, संस्कार मिलन मनाना। वो लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं, और तुम क्या करते हो, मंगल मिलन मनाते हो। किसी और एक अव्यक्त वाणी है होली की, जिसमें बाबा ने कहा है वो गले मिलते और तुम बाप के गले का हार बनते हो। ये है होली। कौन सी होली, जलाने वाली होली, मनाने वाली होली, और संस्कार मिलन की होली। ये तीन प्रकार की होली। एक चौथी होली जो है वो बिंदी लगाने वाली होली, पास्ट इज पास्ट होली, पुराना सारा खत्म, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, वो एक होली है। यहां बाबा ने होली बनाई। उसके बाद में टॉपिक चेंज, हाथ उठाने की बात की बाबा ने। हिम्मत, हिम्मत ही पहला कदम है। बच्चे क्या पूछते हैं, दृढ़ संकल्प का हाथ कब होगा, टाइम, टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। 1999 की मुरली है, 2000 में होगा, 2002 में होगा, या 2005 में होगा। बाबा ने क्या कहा, बहुत काल का, दूसरों को क्या सुनाते हो तुम, बहुत काल का पुरुषार्थ, अभ्यास या संस्कार होगे तो बहुत काल के राज्य अधिकारी बनोगे। तो यहां पर भी क्या है, अगर ये नहीं किया तो संगम युग का बहुत काल का जो सुख है उससे वंचित रह जाएंगे, संगम युग की जो श्रेष्ठ स्थिति है उससे वंचित हो जाएंगे। अगर अल्पकाल का है, अगर समय पर दृढ़ संकल्प किया तो उसको बहुत काल का नहीं कहेंगे, उसे अल्पकाल का कहेंगे। अविनाशी बाप अविनाशी वर्षा देने आया है और तुम लेते हो अल्पकाल का, क्या ये अच्छा लगता है, धोखा खा लेते। बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये अच्छा लगता है। तो पुरुषार्थ हमारा कैसा हो, निरंतर चिरकालीन पुरुषार्थ, एक दिन भी उसमें ढील ना हो। हर दिन शक्तिशाली अमृत वेला, हर दिन शक्तिशाली मुरली का चिंतन हो, ज्ञान और योग, जब ये दो पक्के हैं तो दिन भर फिर कोई परिस्थिति किसी का प्यार आकर्षित नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, हमें डिगा नहीं सकती। अचल अड़ोल स्थिति तभी रहेगी जब शक्तिशाली ज्ञान का चिंतन हो और शक्तिशाली योग हो। तो ये दो आधार है। तो बहुत काल का पुरुषार्थ, हमेशा बाबा कहते हैं बहुत काल, चलो एवर रेडी नहीं भी बने तो ठीक है बाबा ने कहा, परंतु बहुत काल। अब ये मत पूछना कितना काल, ये भी पूछा बोला है कल भी हो सकता है, एवर रेडी दूसरी बात बोली वो, परंतु बहुत काल का, लंबे समय का पुरुषार्थ, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक साल, दो साल नहीं, लंबे समय तक पुरुषार्थ हो, लंबे समय तक निरंतर श्रेष्ठ स्थिति, निरंतर शक्तिशाली योग, निरंतर व्यर्थ से मुक्त, निरंतर अखंड ब्रह्मचारी की जो स्टेज है वहीं पर प्राप्तियां है। सदा का सुख तभी मिलेगा, संतुष्टता तभी होगी, नहीं तो नहीं, श्रेष्ठ स्थिति तभी बनेगी, तो सदा के लिए। उसके बाद में क्या कहा बाबा ने, नैनो में, उसके पहले और एक चीज है, राज्य अधिकारी तैयार है, अकेला बैठेगा क्या, कहा है मेरे, क्या क्या कहा कहा है मेरी प्रजा, रॉयल फैमिली। तो अकेले नहीं, सब चाहिए, राज रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, और सब चाहिए। और फिर मुरली कहाँ चल रही है, ओम शांति भवन में, कुछ सामने बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे, सामने वालों को कहाँ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और पीछे वालों को आगे देख रहे हैं, और नीचे वालों को, नीचे वालों को क्या देख रहे हैं, नीचे वालों का भाग्य देख रहे हैं, उनका त्याग का भाग्य, इनका सामने बैठने का भाग्य, और कोने वालों को दिल में, सोने वालों को सोने से। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस स्वमान में स्थित होकर विश्व की आत्माओं को किरणें फैलानी है। चाहे नए हो या पुराने, चाहे ब्रह्मा कुमार हो या ब्रह्मा कुमारी, चाहे मधुबन निवासी, भारतवासी या विदेशवासी, सबके लिए बाबा की एक शुभ आस है कि लंबे समय का पुरुषार्थ से, बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल का अधिकार लेना है। अब लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बाबा ने कही है वो कौन सी है? बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? नैनों में क्या देखना चाहते हैं? मस्तक में क्या देखना चाहते हैं? कर्म में क्या देखना चाहते हैं? बोल में क्या देखना चाहते हैं? भाव में क्या देखना चाहते हैं? भावना में क्या देखना चाहते हैं? मस्तक में क्या देखना चाहते हैं? हरेक के मस्तक में क्या देखना चाहते हैं? सदैव संपूर्णता की, संपूर्णता की चमकती हुई मणि, नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे, उसमें सदा रूहानियत देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल। कर्म में निर्माणता और संतुष्टता। भाव में, भाव और भावना पवित्रता वो दूसरा, यहाँ भाव में आत्मिक भाव और भाई भाई का भाव, और भावना शुभ। ये करोगे सजी सजाई मूर्त तो श्रेष्ठ मूर्त बनेंगे, पूजनीय मूर्त बनोगे। वो तुम्हारे जड़ चित्र बनाते हैं और बाप तुम्हें तुम्हारा चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। सजी सजाई मूर्त। तो संपूर्ण मुरली का सार है संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, उसकी याद सदा इमर्ज रखनी है। मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब कुछ पवित्रता। जमा करने की विधि है पवित्रता। हम एक चीज भूल गए बीच में, ऐसे नहीं कि खाया कमाया खाया और खत्म। उसकी विधि क्या है जमा करने की? कर्म में भी पवित्रता। बाप दाता है ऐसे सोच लेते हैं कि सफलता तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, परंतु जमा नहीं होगा। तो जमा करने की विधि है संपूर्ण पवित्रता। कल हम किससे मिल रहे हैं? इस संसार की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी से। तो हमारी स्थिति भी कैसी होनी चाहिए? वैसी ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ पवित्र बाप, उसकी याद के लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, नहीं तो वो जो है जैसा है वो मिलन नहीं हो सकता। तो हम जब उसके सामने बैठे तो हमारी स्थिति भी कैसी हो? श्रेष्ठ हो, शांत स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, निगेटिव व्यर्थ संकल्प पर चिंतन से मुक्त हो, सारा ध्यान उसकी ओर हो, कोई ना कोई श्रेष्ठ चिंतन या योग का प्रयोग अंदर ही अंदर हमारा चालू रहे, रूहानी ड्रिल चालू रहे, ताकि जैसे ही वो आए वो जो कुछ कहे हमारे अंदर संकल्प हो वो हम सब कुछ करेंगे, तुरंत करेंगे, अभी अभी करेंगे, जो भी वो होमवर्क देगा वो हम करेंगे। और कई बार हम भगवान से मिल चुके हैं, परंतु यह सोचना कि ये जो मिलन होगा सर्वश्रेष्ठ होगा, महान अनुभव इसमें होगा, उसके लिए शक्तिशाली अमृत वेला और सारे दिन भर भी स्थिति कैसी हो? अव्यक्त स्थिति, मौन की स्थिति, आंतरिक मौन, और निरंतर जैसे उससे जुड़े रहे, क्योंकि संसार का वातावरण बिगड़ रहा है। अभी अभी एक भाई है ब्रदर नेविल, उसने दादी जानकी के लिए बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसमें इस संसार का वर्णन एक कविता के रूप में किया है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। बचपन में ये कविता रहती थी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, नो किंग्स मैन और किंग्स हॉर्सेस और द किंग्स मैन कुडंट पुट हम्प्टी टूगेदर अगेन। सारे राजा वो झाड़ वो दीवार पर तो बैठ गया और गिर गया, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कुडंट पुट हम्प्टी टूगेदर अगेन। ये संसार की हालत है, सारी प्रयत्न कर लिए परंतु उसको नहीं बचा सकते, ये संसार डूब रहा है, बचाने वाला केवल वो है और वो अब आ रहा है। जल्दी चलना है, कहा ना हम तो अभी जा रहे हैं संपन्न बनकर, ये भी आया मुरली में बीच में। तो ये जो समय है इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, संगम युग का समय है ये, और यहाँ पर हमारा उससे मिलन इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में सबसे स्वर्णिम घटना है ये। जो कल होने वाला है, जो घटित होने वाला है, वो कोई साधारण नहीं है। हमारे जीवन के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस तारीख को हमने भगवान से मिलन मनाया था। जब हमारी भी जीवनी लिखी जाए तो उसमें ये बात आएगी कि इन आत्माओं ने भगवान से मिलन मनाया था। लोग लिखते हैं ना बायोग्राफी, मूवीज भी बनती है बायोपिक्स, तो जब हमारी बनेगी तो उसमें क्या लिखा होगा, निखिलेश भाई इस तारीख को इन आत्माओं ने भगवान से मिलन मनाया था। अच्छा, ओम शांति।